हम बात कर रहे थे कि ईसाइत में 1000 साल की जो बात हुई, तो इसके बारे में बाज़ मुफस्सरीन ये तक कहते हैं कि ये क़यामत के दिन की बात है, बाज़ कहते हैं कि इस पूरी दुनिया की बात है। सूरत मारिच में भी यही बात थोड़े से फ़र्क से आती है, वहाँ 50 अल्फ़ सना का तذکرہ आता है। तो जैसा कि पहले कहा गया कि ये आयत गैब के मामलों में से है, इसके बारे में हमारा ईमान वही है कि इनकी हकीकत को अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मैंने इशारा किया था आपको कि बादशाह अकबर के दौर में जो तब्दीलियाँ आईं, थोड़ी सी मज़ीद उस पर बात करूँगी। हम जानते हैं कि मुसलमानों का जब भी जवाल शुरू हुआ, तो उस वक्त वो जो दौर था पीछे से, कि बादशाह जो था वो ही अपने वक्त का आलिम भी होता था, जिसको अपनी ज़ुबान में हम खलीफ़ा कह सकते हैं, वो बात ख़त्म हो गई। कहते हैं कि बादशाह अकबर जो था, ये ख़ुद बिल्कुल भी किसी बात को नहीं जानता था, चट्टान पर जिसको आप कह लें, दीन की कोई भी चीज़ इसको नहीं पता थी। लिहाजा इसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे उलमा को जमा किया हुआ था। नौरतन का नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी, यानी बादशाह अकबर के नौरतन बहुत मारूफ थे, 9 बड़े बड़े आलिम जिनको कहें, जिनमें फैज़ी, अबुल फजल गालिबन, तो इनमें से गालिबन फैज़ी ने कुरान पाक की वो तफसीर लिखी थी जिसमें कोई नुक्ता नहीं था। यानी उस दौर में लोग इस तरीके से बाज़ दफ़ा कुरान पाक की तफसीर लिखा करते थे कि जिसमें कोई यूनिक बात हो। लेकिन आप देखिए कि जब अकल पे पर्दे पड़ते हैं, जैसे कि पीछे बात हो गई कि फ़ैन हलाता मल अबसार वला किनता मल कुलूब, कि इन्हीं उलमा में से कुछ ने फिर एक वक्त आया कि इसके इस बात पे कि मैं एक नया दीन शुरू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये आयत दलील में रखी कि 1000 साल तक के लिए अल्लाह की प्लानिंग होती है, लिहाजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दिया गया था उसको अब 1000 साल पूरे हो गए, और एक नया दीन जिसको दीन इलाही कहा गया, नाम भी देखिए दीन इलाही, ये कौन सा इला था? अल्लाह को कहते थे? नहीं, बादशाह अकबर को इला कहते थे। उसका आगाज़ हुआ, बहरहाल जब ये हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा हुआ, इसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आईं। उस दौर में फिर जिनको आज लोग दाता हजवेरी कहते हैं, जिनका लकब भी मुजद्दद अल्फ़ सानी है, ये वो मर्द खुदा थे कि जिनको अल्लाह ताला ने चुना, और इन्होंने दीन इलाही के मुकाबले में जिहाद किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, अकबर जो है वो खुदा नहीं बल्कि अल्लाह ताला। इस वजह से आप देखिए कि उन्होंने उस दौर में जो तौहीद का काम किया और इनकी शोहरत हुई, आज देखिए लोग उनके नाम पे क्या कर रहे हैं, कि दाता हजवेरी कह के लोगों ने शायद उन्हीं को दाता समझ लिया, हालांकि दाता भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस दौर के शिर के आगे बंद बांधा था। मैं सोचती हूँ कि जब कोई अपने वक्त में नेकी का काम करते हैं ना, तो अमूमन उस वक्त लोग उनकी कदर नहीं करते, लेकिन बाद वाले लोग उन्हीं को हीरो बना के पूछ लेते हैं। अब ये हमारे गुमान के मुताबिक अल्लाह के पास अपनी नेकियों का सिला पाएंगे। आज लोग जो उनकी कब्रों पे जाके मामलात करते हैं, फिर इसका मामला लोगों के साथ है, और कल क़यामत के दिन वो कह देंगे ये कि अल्लाह ताला हम तो इनके शिर्क से बेजार थे। तो सारी बात का जो खुलासा है वो यही है कि जब बंदे का दिल टेढ़ा होता है ना, जब दिल कल्बे सलीम की बजाय कल्बे अकीम बन जाए, तो फिर सीधी बात भी उल्टी पड़ती है। बहुत दुआ किया करें। इस वक्त आप कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, और कुरान की ज़िरवा यानी बिल्कुल पीक पे, आप मिडल में हमेशा पीक होती है। अब इस वक्त अगर आपके दिल के अंदर कोई भी हल्का बहुत शुबा भी आता है ना कभी दीन की किसी चीज़ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन अल्लाह ताला कुरान की आयतों में कोई ऐसी बात ले आता है कि जिससे आपको अपना दिल धुलता हुआ महसूस होगा, और एक ज़िंदा ईमान की ही अलामतें होती हैं कि उसमें कभी खिजा आती है कभी बहार आती है। इसी तरह हमारे ईमान पर कभी खिजा आती है कभी बहार आती है, कभी हमें अपना ईमान बहुत बड़ा हुआ दिखता है। हज करने के लिए जो लोग जाते हैं, पहले ही देखें उनके चेहरे चमकने लग जाते हैं, रमज़ान से पहले ही हम तैयार हो जाते हैं। तो ये एक ज़िंदा दिल है, ये नेचुरल है, कभी आपका बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ने को दिल चाहेगा, कभी बिल्कुल ही सतही सी, कभी सिर्फ फ़र्ज़ भी मुश्किल लगते हैं, कभी आप सुन्नतें और नफिल भी पढ़ने लगते हैं। तो इसका अंदर ये कि ईमान जिंदा है, लेकिन अगर हमने इसको पानी देना छोड़ दिया, अगर हम कुरान से कट जाते हैं, तो फिर उस सूरत में वो पौधा जिसको नीचे जड़ों से काट दिया जाए, बिलाखिर उसके ऊपर खजा आ जाती है। कभी भी एक बंदा अपने आप को इस तरह महसूस करे, तो फौरन दुआ मांगे। अल्लाह के नबी क्यों दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा वफी बसरी नूरा लिसानी नूरा, कि अल्लाह मेरे दिल में, मेरी ज़ुबान, मेरी आंखों पर नूर हो, यानी मैं चीज़ों की हकीकत समझूँ, ऐसा ना कि मेरा कल्ब कल्बे सलीम की बजाय कल्बे अकीम हो जाए। आप देखिए कि दिल एक तो वो ऑर्गन है ना जो हमें दुनिया में दिखता है, जिसमें ज़रा सी कमी बेशी होती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसी तरह याद रखें कि ईमान के दिल को भी अटैक होता है। एक दिल वो है जो हाथ में आ जाता है, ऑर्टरीज और वेन्स है जिसमें, जिसको मेडिकल की रूह में आप वाकई हार्ट कहते हैं। डॉक्टरों के हाथों में भी आ जाता है, नर्सें भी मदद करती हैं उसको, धड़कता हुआ लोग देखते भी हैं। उस दिल को मशीनों पे भी डाला जाता है। किसी की भी अगर कोई हार्ट सर्जरी हुई हो या किसी और की होती भी देखी हो, तो वो सारी एग्जाम्पल्स इमेजिन कीजिए। जिस तरह दिल के अंदर ज़रा सी कोई बीमारी आती है, कभी इंजाइना का पेन, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी दिल के वॉल बंद हो गए, तो कई हाथ लग जाते हैं ना उसके दिल को ठीक करने के लिए। और आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कभी लेजर्स के साथ करते हैं, कभी प्रेशर्स देते हैं, कभी ब्लूमिंग करते हैं, फिर दिल ठीक हो जाते हैं। फिर हार्ट पेशेंट जो होता है उसके लिए कुछ पाबंदियाँ होती हैं, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकता, कुछ ये नहीं खा सकता, वो नहीं खाता, लेकिन वो दिल चलता रहता है जब तक होता है। इसी तरह हमारे अंदर एक और दिल भी है, यहाँ जो तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब है ना, असल में ये बाहर के दिल की बात नहीं है। आप कह लें कि तामल कुलूब क्या है, ईमान के दिल को हार्ट अटैक होना। अच्छा भला ईमान वाला दिल होता है, बड़े नेक बड़े अच्छे, एकदम ऐसा दिल का दौरा पड़ता है कि बंदे की सोच ही मारी जाती है। बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि बाज़ सितारे कभी कभी चलते चलते उल्टी चाल चलने लगते हैं, इसी तरह जब दिल तामल कुलूब की कैफियत में आता है तो जो ईमान का दिल है वो काम करना छोड़ देता है। अब उसके लिए भी फिर ओपन हार्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी समझदार हार्ट स्पेशलिस्टों की ज़रूरत होती है, बहुत पोलाइट सॉफ्ट मिजाज को पहचानने वाली नर्सों की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द किसी शख्स को हिदायत पे चलते चलते हिदायत से पलटता देखें, तो फ़ौरन 911 पे कॉल करें, एमरजेंसी में कॉल करें, फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाएं, क्या अब इसकी ज़िंदगी खतरे में है। किसी शख्स को दिल का दौरा पड़े तो मेरा लिए सख्त से सख्त दिल शख्स भी बेहिस होकर नहीं बैठता, राह चलता फ़ोन करके पुलिस को बता देगा कि वहाँ फलां शख्स गिरा हुआ है। लेकिन क्या बात है कि जब ईमान के दिल को दौरे पड़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा फिर अब इनकी मर्ज़ी, हमारा दिल क्यों नहीं तड़पता, हम क्यों नहीं जलते अपने उन रिश्तेदारों के लिए, हमारे दिल में क्यों अपनी उस औलादों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए तकलीफ़ नहीं होती। बस दफ़ा कुछ साथी हमारे साथ कुरान के सफ़र में होते हैं, हम उनके साथ चल रहे होते हैं, फिर एकदम किसी मजबूरी की वजह से वो पीछे हटते हैं, हम कहते हैं चलो फिर जहाँ रहें खुश रहें। ठीक है हमारी कोशिश से कोई भी ना आए, एक भी ना आए, लेकिन हमारे दिल में इतनी तकलीफ़ होनी चाहिए, इतनी तड़प हो कि अगर हमारी एक आंख हंसे तो दूसरी आंख रोए, कि एक शख्स जो है वो दिल की बीमारी का शिकार हुआ और चाहे उसको दुनिया की मोहब्बत खींच के ले गई या कोई और चीज़ हुई, तो ऐसे वक्त में फिर हमारी बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगली आयतों में हम देखेंगे कि ऐसे ही बीमार दिलों पर जो शैतान के हमले होते हैं उसका तस्करा आएगा। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 49 को। قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, ए हबीब आप फरमा दीजिए कि ए लोगो बस मैं तो तुम्हें इज़ाब इलाही से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। बड़ा दर्द है इस आयत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज, आपका पैगाम क्या था कि सोए वो को जगा दो। नज़ीर अरब लोग उस शख्स को कहते थे कि जो किसी ख़तरे को भांपने के वक्त ऊंचे टीले पे खड़ा हो जाता, अपने कपड़े उतार कर हवा में लहराता, क्योंकि उस दौर में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, तो रात के वक्त जब सफ़र में पड़ाव डालते यानी ट्रैवलिंग हो रही होती और जब रात को वो स्टॉप ओवर करते तो एक शख्स को टीले पर खड़ा कर देते, पहरा देता, इधर से देख रहा है कोई चोर नहीं आ गया, डाकू नहीं आ गया, कोई शेर चीता नहीं आ गया। फिर वो जब पहरा देता, ज़रा सा उसको कोई ख़तरा महसूस होता ना तो अब लोगों को ललकारता, लोग तलवारें लेकर आ जाते। आम हालात में जब लोग उसकी तरफ ना देखते तो अपनी कमीज़ या अपने कपड़े उतार कर हवा में लहराता, ये इस बात की अलामत होती थी कि उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। इसको लोग नज़ीरे उरियां कहते थे, उरियां कहते नेकेड को, बरहना, जो कौम को दुश्मन के ख़तरे से आगाह कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आगाज़ में अल्लाह का पैगाम सुना, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक और वानज़िर शीरतकल अक़रबीन, तो उसके बाद आप भी कोहे सफ़ा पर गए। ये उसी दौर के रिवाज के मुताबिक था और आपने लोगों को जमा किया। कुछ लोगों ने उस वक्त आपको भी ये मशवरा दिया कि आप भी नज़ीरे और यहाँ की तरह कपड़े उतार कर लोगों को मतवज्जो करें ताकि ज़्यादा लोग आएँ, तो आपने फरमाया ये मैं नहीं करूँगा। इससे क्या बात पता चली कि इंसान दावत और तबलीग में लोगों को मानूस करने के लिए पहले से मौजूद तरीके अपना सकता है, लेकिन जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकराएगी फिर उसको नहीं अपनाया जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीरे और यहाँ की बजाय नज़ीर और मुबीन कहा कि देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये ख्वाहिशों के जंगल में भटकते ही जाएंगे, कोई ख्वाहिश का शेर या चीता आएगा और इनको निगल के ले जाएगा। बास लोगों को तो ख्वाहिशों के शेर और चीते नहीं निगलते, उनको छोटे छोटे केचवे और छोटी छोटी चीज़ें बहुत काफ़ी लगती हैं अपनी दुनिया में से वापस पलट जाने के लिए। तो कहा लोगों डर जाओ, समझ जाओ, देखो क्या होने वाला है। और अल्लाह के नबी कहा करते थे कि लोगों जो बात मुझे पता है, अगर तुमको पता चल जाए तो तुम कभी भी मुर्दों को कब्रों में ना दफन करो। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि लोग मुर्दों को दफन करना छोड़ देंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि कब्र के अजाब का कुछ हिस्सा दुनिया में खोल दे। ये हदीस का मफहूम है। इतनी तड़प थी, इतनी तकलीफ थी आपको इस चीज़ की कि लोग क्यों बीमार हैं, क्यों इनके दिल गंदे हैं। हालांकि आप सोचें तो सही, कभी आप अपने ऊपर ले के सोचा करें कि अल्लाह के नबी को गम क्या था, किस चीज़ की कमी थी। आराम से रहते, मस्जिद में बैठते, इबादत करते, गारे हिरा में जाते, सत्तू ले जाते, इबादत करते। कितना आसान होता है ऐसी नेकियां करना, कंफर्टेबल माहौल में रूटीन लाइफ के साथ नेकियां करना। लेकिन जब लोग अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहते इस वजह से कि लो अब हम अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाएं, घरों में बेसकूनी करें, अपने बच्चों को रुलाएं, अपने शौहरों को नाराज़ करें और जाके लोगों के लिए खैर की बात करें, तो उनको अल्लाह के नबी को याद कर लेना चाहिए कि किस तरीके से आप तड़प तड़प के लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते थे, और फिर उसके बाद जो ना आए तो उसके लिए अल्लाह के नबी के दिल में कितनी तकलीफ़ थी। कहा आप गम ना करें, आपने हक अदा कर दिया। कभी आप अल्लाह के नबी को मैदान अरफा में देखिए कि जिस दिन आप लोगों को जमा करके पैगाम दे रहे थे और पूछ रहे थे कि लोगों क्या मैंने अल्लाह का पैगाम दे दिया, बताओ मुझे क्या जो काम अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया था मैंने कर दिया। सहाबे कराम आवाज़ें बुलंद बोले, जी अल्लाह के नबी, अदईता, आपने हक अदा कर दिया, व नसहता, और आपने खैर ख्वाही की। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे और आप आसमान को देखकर अल्लाह को पुकार रहे थे, अल्लाहुम्मशगत, अल्लाहुम्मशगत। किस चीज़ का तड़प थी, कभी गौर करें। हम सब भी तो उसी उम्मत के साथी हैं, हम भी तो उसी नबी की कौम के अंदर हैं, हमें ये तड़प क्यों नहीं लगी अभी? इसलिए कि अभी शायद हमारे अपने अंदर वो मरहले नहीं आए कि जो हमें वाकई दूसरों की फ़िक्र लगा दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो इनके लिए मग़फ़रत भी है और बाइज़्ज़त रोज़ी भी है। ईमान और अमल सवाले, दो साथ रहने वाले दोस्त, दो सहेलियाँ, दो बहनें, दो भाई, एक नहीं होता ना तो दूसरा उदास होने लगता है। जैसे आपकी दोस्त ना आए तो आप क्लास में बैठकर भी उदास फील करते हैं ना, आपकी भी नज़रें लगी रहती हैं दरवाज़ों की तरफ। इसी तरह याद रखिए, सच्चा ईमान अमल का मुंतज़िर रहता है, पलट पलट कर देखता है बंदे को किधर गया, हाय मेरा अमल साले भाई क्यों नहीं आया। ये कैसा ईमान है जो अमल साले पे मजबूर नहीं करता। इसी तरह वो लोग जो अमल साले के नाम पे कई किस्म के चैरिटीज़ और कई किस्म के इंसानी फलाह बहबूद के काम करते दिखते हैं, उनके वो अमल भी पलट पलट के देखते हैं कि अल्लाह इसको ईमान दे, हम अपने ईमान भाई को मिस कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मिलेंगी तो लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जैसे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर में जब तक दोनों तारें अंदर नहीं लगती, सॉकेट के अंदर इलेक्ट्रिक नहीं पास होती, इसी तरह ईमान और अमल सवाले, आप कह सकते हैं कि जन्नत में जाने के लिए ये दो टांगे हैं, ये दो ऐसे टूल्स हैं कि इनमें से एक की कमी दूसरे को बेकार करती है। बीसियों मिसालें आप अपनी अमली ज़िंदगी में ले सकते हैं कि जब भी कभी एक चीज़ हो दूसरी ना हो आप काम नहीं कर सकते। मसलन माचिस, माचिस की डिबिया मौजूद है, अंदर तीलियां ख़त्म हो चुकी हैं, आप चूल्हा नहीं जला सकते। तीली गिरी हुई मिल गई लेकिन अब उसको घसीटे किस पे, काम नहीं हो सकता। जूती का एक पाँव है दूसरा नहीं है, नहीं चल सकते। एक जुराब है दूसरी नहीं है, नहीं पहन सकते। इसी तरह अपने ईमान को अमल सवाले की मुसाहबत दीजिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ कुरान वो ज़मीन हमवार कर देता है कि जिसके अंदर ईमान के बाद अमल सवाले के पौधे लगते हैं। कहा मग़फ़रत दे दूंगा, तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा, जो तुमसे कमियां बेशियां हो गई इस मामले में मैं उसके ऊपर तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा ऐसी बातों में कि बताओ ये क्या करके आए और वो क्या करके आए हो। फिर आप देखिए पीछे या अय्युहन्नास में इंसानियत को पुकार दी थी, ये नहीं कहा था या अय्युहल अरब, ओ अरबियो, ये नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमून, नहीं, या अय्युहल अंसार, या अय्युहल मुहाजरीन, नहीं, या अय्युहन्नास। ये इंसानियत के लिए एक तोहफा था जिसको अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से उन तक पहुंचाना था। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों के गुनाह माफ़ होंगे। क्या हमें तरस नहीं आता उन लोगों पे जो गुनाहों में लुथड़े पड़े हैं और उनकी आंखें हमारी तरफ देख रही हैं कि आओ और हमें बचा लो इस जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से। लेकिन बात यह है कि जब ईमान वाले अपने ही हाल में मगन रहे तो एक दूसरा गिरोह तेज़ हो जाता है, और वो कौन सा है? वल्लज़ीन सऊ फ़ी आयातिना, और जो लोग कोशिश करते रहे हमारी आयतों की तरदीद में। मुआजिज़ीन औलाई का असहाबुल जहीम, वो इस ख्याल में थे कि हमें हरा देंगे, हालांकि यही लोग दोस्ती हैं। आज इस्लाम को फैलाने की उतनी कोशिशें नहीं हैं जितनी इस्लाम को ढाने की कोशिशें हैं। यहाँ जो लफ्ज़ है मुआजिज़ीन, मुआजिज़ की जमा है, मुआजिज़ा मुसाबिका, आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, यानी हम बड़े हैं कुरान की आयतें छोटी हैं। इसके कई अंदाज होते थे उस दौर में भी। हम मानते ही नहीं कि ये अल्लाह की आयतें, हम कहते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख ली। कभी इसको शायरी कहते, कभी जादू कहते, कभी असातीरुल अव्वलीन कहते। आज के दौर में कहते हैं 1400 साल पुरानी किताब पढ़ोगे। आज के दौर में कहते हैं ये मसलक के नाम पे तुम्हारी सोच बदल देंगे। ये कुरान पढ़ा तो तुम्हारा दिल खुल जाएगा, इससे बेहतर है कि तुम फिर हम पे तनकीद करो, बेहतर है कि तुम पीछे ही हट जाओ। इस तरीके से इनकी कोशिश है कि ये हमको थका दें। कहा ये नहीं कर सकते, नामुमकिन है। इनका ख्याल है कि हम ये करें। आप देखें, जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे और आज तक, सिर्फ हम इस दौर को ही ले लें, पिछले दौर को तो छोड़ दीजिए, कितने इस्लाम पे शोशे आए बताइए। क्या उसके बाद कुरान के एक ज़बर और ज़ेर में चेंज हो सकी? कोई एक मानी मफहूम बदला? क्या किसी दौर में ये बात हो गई कि सूद को हलाल कर दो? हो गया। आवाज़ें तो उठती हैं, नगारखाने में तोतियों की आवाज़ें उठती रहती हैं, लेकिन क्या हुआ? औरत मर्द की बराबरी पे कितनी बातें हुई? क्या आज तक ये कानून पास हो गया कि हो गई हैं बराबर अब औरतें? क्या आप बताइए कि कभी भी हराम और हलाल की पाबंदियां और जो लोगों को बुरी लगती हैं, सारी कोशिशें लोग कर लें, क्या इसके नतीजे में वो कामयाब हुए? नहीं हुए। अब अगली आयत में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह के नबी के दौर की ऐसी कोशिशों का तस्करा है जिसकी रोशनी में हमें आज के हालात भी समझ में आ जाते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद क्यों मामला जो हैं वो इस्लाम के बारे में फैलने लगते हैं और हर तरफ से एक ही प्रोपेगंडा होता हुआ क्यों दिखता है कि शायद इस्लाम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों के रास्ते की रुकावट है। तो आयत 52 को देखते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल, और वला नबी जिन, और ना कोई नबी। यहाँ पहले रुक के देख लीजिए कि रसूल और नबी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीछे भी इस पे बात हुई थी कि रसूल वो होता है जिसको नई शरीयत मिलती है, नई किताब मिलती है, और वो अल्लाह का पैगाम देता है, जबकि नबी वो होता है जो पिछले ही रसूल की तालीमात को आगे बढ़ाता है। आप कह सकते हैं कि हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है, और इसमें बहुत सारे अकवाल है जिस पे हम पीछे बात कर चुके हैं। रसूल के पास ख़ास तौर पे वही आती है, उसको किताब मिलती है, उसको शरीयत मिलती है। जैसे आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील मिली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बरक्स आप देखिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो मुआविन थे। तो आप कह सकते हैं कि मूसा अगर रसूल और नबी थे तो हारून जो थे वो नबी थे, जो मूसा की किताब तौरात और उन्हीं की शरीयत की तबलीग किया करते थे। तो ये दो मुख्तलिफ थे। अल्लाह ताला ने यहाँ एक बात बता दी कि हम जब भी कोई रसूल और नबी भेजते हैं, यही एक और बात समझ लीजिए तो फिर आगे बात और भी आसान हो जाएगी। और वो क्या कि रसूलों की फिर दो किस्में होती हैं। एक रसूलुल इंस होता है, इंसानों में रसूल, जो कि हम देखते हैं 1,24,000 मारूफ रिवायत जो है उसी से कम वेश कुछ ना कुछ होंगे। इसी तरह एक होता है रसूले मलक, फरिश्ता। रसूले मलक कौन होता है? वो फरिश्ता जिसके ज़रिए अल्लाह ताला पैगाम भेजते हैं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के पास वही जो थी वो जिब्राइल लेकर आए। तो लिहाजा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन वला नबीश, इसमें हम ना सिर्फ ये कि इंसानों के अंदर रसूलों की बात करेंगे, बल्कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का पैगाम रसूल इंस तक लेके आते हैं उसकी भी बात करेंगे। सूरत मरियम में हम पढ़ चुके कि फरिश्ता अल्लाह वही लाता है, वो भी रसूल है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, यानी रसूल हूँ। तो अब जब भी कभी किसी इंसान या फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह का पैगाम आया तो शैतान की कोशिश क्या होती है, इल्ला मगर इज़ा तमन्ना अल्कश्शयातीन फ़ी उम्नियती, मगर इसके साथ ये हुआ कि जब इसने कुछ पढ़ा तो डाल दिए शैतान ने इसके पढ़ने में कुछ शक व शुभे, कुछ शकूक। फिर होता क्या, फ़यनसखुल्लाहुमा युल्किश शैतानु, बस मिटा देते अल्लाह ताला जो दखल अंदाजी करता है शैतान। फिर सुम्म युहकिमुल्लाहु आयातिही, फिर पुख्ता कर देता है अल्लाह अपनी आयात को। युहकिम हकमा याकुमु मुहकम, वही लफ्ज़ है, क्योंकि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब इस आयत को और इसे अगली आयत को अगर हम साथ लेंगे, बहुत ही अहम आयत है, थोड़ी सी समझने वाली आयत है। असल में तो इसके अंदर शैतान की उन कोशिशों का तذکرہ है जो अल्लाह की आयत के मुकाबले में दूसरों को अल्लाह की बात को गलत साबित करने की कोशिशें वो करता है। पीछे हमने देखा ना वल्लज़ीना सऊ फी आयातिना, असल में ये आयत अब उसी आयत की कुछ तफसील है। यहाँ लफ्ज़ तमन्ना को अगर देख लें तो हमें इस आयत के दो मफहूम समझ आते हैं। तमन्ना का जो लफ्ज़ है ना, इसको हम आरजू या दिल में ख्याल डालने के मानों में लेंगे। तमन्ना मुनियन से उमनिया पीछे हम पढ़ चुके। दूसरा इसका मानी होता है तिलावत करना। तो अगर हम उमनिया का तर्जमा लेंगे तो मुराद होगा कि शैतान नबी या रसूल की तमन्ना में खलल डालता है। उसको देख लें तो वो खलल क्या है, नबी की क्या तमन्ना होती है, अल्लाह का पैगाम फैले, लोग दीन की तरफ आएं, इस्लाम सीखें, कसरत से बात फैले, हर बंदे को समझ आए, जो जुड़ गया कुरान से अब वो सारी ज़िंदगी ना टूटे, यही तमन्ना होती है ना। बुराइयाँ ख़त्म हो, खराबियाँ ख़त्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो पहला मफहूम यह है कि नबी की या रसूल की इस तमन्ना के रास्ते में शैतान रुकावटें डालता है। वो जितना इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता है शैतान उतना इस्लाम को ढाने की कोशिश करता है। जितना नबी लोगों को बुलाने की कोशिश करता है शैतान उतनी लोगों के दिलों में गलत चीज़ें डालता है। हत्ता कि यहाँ तक कि लोगों को पता होता ही हमारे हक़ में बेहतर चीज़ है, हमारी खैर है इसमें, हमें इससे फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी शैतान उनको रोक लेता है। जनरल मानी ले लें, इसकी डिटेल्स हम देखते जाएंगे साथ साथ आगे जाके। ये एक मानी हो गया कि शैतान नबी की तमन्ना के अंदर खलल अंदाजी करता है और इस तरह से बातें कर देता है कि जिसकी वजह से लोग फिर इस किताब से दूर हो जाते हैं। और अल्लाह क्या शैतान की इस तमन्ना को पूरा होने देता है, हरगिज़ नहीं। फ़यनसखुल्लाहुमा युल्की शैतान, अल्लाह शैतान की दखल अंदाजियों को खोल के रख देता है। जिनके दिल कल्बे अकीम नहीं बने होते, कल्बे सलीम होते हैं, जिनके दिल अभी अंधे नहीं हुए होते, वो शैतान की इन बातों को समझ जाते हैं। पीछे भी बात हुई कि ईमान कोई मुर्दा चीज़ नहीं, ईमान कोई बेजान गूंगी बहरी चीज़ नहीं है, कोई लंगड़ा लूला ईमान नहीं होता। ईमान बंदे को गर्म करता है, जैसे ज़िंदा इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है ना, इस तरह सच्चे मोमिन के दिल के अंदर ईमान दौड़ रहा होता है। शैतान उसके पास भी आता है, शुबे उसके भी दिल में आते हैं, शिकवे उसके भी दिल में आते हैं, गलत फहमियाँ उसको भी होती हैं, उसको भी कुरान पढ़ना मुश्किल लगता है, उसको भी कुरान पढ़ाना मुश्किल लगता है, उसको भी नमाज मुश्किल लगती है, दीन के तकाजे मुश्किल लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो पिछला ख्याल जाता है आगे और साफ खून पीछे से आता है और वो ख्याल निकलता रो कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिन हमज़ातिश शैतान, अल्लाह तेरी पनाह में आती हूँ शैतान के वसवसों से। फिर जब उसको होश आता है तो कहता है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ, मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के लिए भी ना करना। फिर वो ठीक हो जाते हैं, सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाती, फिर दिल जम जाता है, कई दफ़ा इंसान थिड़कता है फिर सीधा हो जाता है, टूटने लगता है फिर जुड़ जाता है, गिरने लगता है फिर संभल जाता है। रोकने लगता है, फिर चलने लगता है। ये तो एक जनरल बात है, बिल्कुल आम बंदे सच्चे मोमिन के साथ भी ये हो सकता है। कोई भी ये ना सोचे कि ऐसा ख्याल आ जाए कोई जिसमें इस्लाम या दीन की कोई बात मुश्किल लग जाए तो गोया कि ईमान चला गया। नहीं, सहाबा कराम फरमाया करते थे कि अल्लाह के नबी बस दफ़ा तो दिल में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि जल के राख हो जाए, ये बेहतर है इससे कि हम उसको ज़ुबान पे लाएं। पता नहीं अल्लाह के नबी के बारे में कोई ख्याल आ जाता होगा, अल्लाह की ज़ात के बारे में आता होगा, क़यामत, हशर, नशर, जन्नत, जहन्नम के आते होंगे। तो आपने फरमाया कि गम ना करो, ये सरीह ईमान है। अब देखिए चोर वहीं आता है ना जहाँ खजाना होता है, खाली घरों में क्या आएगा कोई चोरी करने। इसीलिए जिस दिल के अंदर ईमान का खजाना होता है ना, उसको तो बड़े बड़े पहरे रखने चाहिए। जब वो हर वक्त लोगों को खुद ही सुनाता फिरे ना, बड़ा ही नमाजें पढ़ती हूँ, अब तो तहज्जुद भी शुरू कर दी, अब तो गीबत ही छोड़ दी, अब तो रोज़े ही शुरू हो गए, तो समझे ये उस शख्स की मिसाल है। मसलन किसी के घर में पैसे हों, लाखों रुपया रखा हुआ है, हर आने वाले को तुम्हें पता मेरे घर में लाख रुपया पड़ा है, तुम्हें पता है मेरे पास सोने का सेट पड़ा, तुम्हें पता है डायमंड्स की पोटली पड़ी है। आप सोचें उस शख्स को आप क्या कहेंगे। उम्मीद है ना कि आएगा कोई ना कोई पकड़ के ले, जिसने नहीं भी आना वो भी आ जाएगा। जो लोग अपनी नेकियों की शोहरत करते हैं ना, याद रखें वो अपनी नेकियों को रिस्क पे ले आते हैं। ईमान तो 7 तालों में छुपा के रखने वाली चीज़ है। हाँ, जिसके पास रुपया पैसा माल होता है वो खुद ही दिखता है, वो ये नहीं कहता कि लोग देखें मेरा माल, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा जेवर लोग देखें, वो नहीं करता। वो तो अपने लिए खाता पीता पहनता ओढ़ता रहता जीता है, लेकिन दिखता है दूसरों को, लोगों की भी आंखें हैं। लेकिन जो हर जगह थुड़ दिले की तरह और छोटे दिल वाले शख्स की तरह हर वक्त अपनी बड़ाई मारे, किसी वक्त आएगा चोर लेके चला जाएगा। कई वाक्य आप सुनते हैं, लोग कहते हैं बस में बैठे तो किसी को मत बताएं आपके क्या पैसे हैं, किसी के हाथ से कुछ ना खाएं। कहा नहीं, वो तो केला ही खिलाएंगे, कहा केला भी ना खाओ उसमें भी इंजेक्शन डला हुआ था बेहोशी का। ये हम हमारे मुल्कों की बातें हैं। इतना खौफ और हरास पैदा कर दिया गया कि शायद सारे लोग ही जो वो तुम्हारे दुश्मन है, तो 4 पैसे जमा हो जाएं तो गम लग जाए। ईमान के 4 अगर बोल जमा हो गए दिल में तो उसको बचाइए। मैं और आप बड़े रिस्क पे हैं, इतनी बड़ी हमारी आजमाइश है जितनी शायद किसी मिलियनेरियन की नहीं होगी। उसने तो पता नहीं कितनी इंश्योरेंसेस करा के सिक्योर करके अपने पैसे को संभाला हुआ है, हमारे पास तो अभी 4 पैसे नहीं जमा हुए ईमान के। अभी तो सीधी तरह खड़ा भी नहीं हो सका हमारा ईमान, हमारी तो अभी नमाजें वो नहीं है। तो याद रखे, जब कभी किसी रसूल या नबी या आज उम्मतियों में से हर वो बंदा जो सच्चे दिल से दीन की तरफ लगा हुआ है, शैतान फौरन आता है, अलक शयातीन फी उम्नियती, किधर चल पड़ी, क्या हो गया, किसकी बातों में आ गई, मत मरी हुई है, घर खराब करना है, बच्चों को नहीं पालना, बेटियों के रिश्ते नहीं करने, ये है शैतान की तमन्नाओं में खलल अंदाजियाँ। का नहीं, फयनसखुल्लाहु मा युल्की शैतान, अल्लाह कहते हैं फिक्र ना कर, सच्चा ईमान रखो। आप देखिए कि इसको फिर वही समझें कि किसको नहीं पता कि बैंकों के अंदर पैसा रखा हुआ है, किस चोर को नहीं पता कि लॉकर्स में लोगों ने अपना कीमती सामान रखा है, फिर क्यों नहीं कोई चोरी करता उधर। समझेंगे आप इससे बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह, क्योंकि चोर को पता है इस दीवार के अंदर लॉकर है और इसके अंदर लोगों की करोड़ों की चीज़ें पड़ी हैं, आता क्यों नहीं है। उसको पता है पहरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है, अलार्म लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कहीं कोई आ जाएगा, कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे। अब इसी चीज़ को ले आए, हो आपके पास नेकियों का ख़जाना, अल्लाह की रहमत से अल्लाह आपको ईमान की दौलत से नवाज दे, आपको तहज्जुदों के हीरे मोती दे दे, अल्लाह ताला आपको इखलास की चांदी दे दे, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता शैतान आपका, अगर आपने बाहर पहरे रखे हुए। और ये पहरे कैसे लगते हैं, कैसे अपनी नेकियों को महफूज करें। देखें आप एक छोटी सी मिसाल समझें, आज के दौर में मारूफ बात है कि लोगों के पास जेवर होता है, पहनते नहीं है, क्यों नहीं पहनते कि चोरी हो जाएगा, बैंक में रखा हुआ असली जेवर और नकली पहन के फिरते हैं, तो बनाने की मुसीबत क्या पड़ी थी। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अब इस मिसाल को आप लेंगे अपनी इबादत पे, तब देखें असली सोना आप रख दें बैंक में, आपने तो बहुत ज्यादती की, जुल्म किया आपने, या तो आप बनाए ना या पहने, पहनने तो बना ले। अगर आपने कीमती जेवर पहनना हुआ तो क्या उससे कीमती आप खुद नहीं है, आपकी इज्जत, आपका ईमान, आपका बहुत कुछ ज्यादा कीमती है उससे, जिससे जिसको आप सोने को समझे बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह याद रखें कि बाज लोग कीमती ईमान दिल में छुपाए बैठे होते हैं, अंदर बहुत कीमती ईमान है लेकिन उनके अमल नकली सोने के होते हैं। अल्लाह बचा के रखे, मुझे तो खौफ आता है, मैं कहती हूँ अल्लाह तू बस आफियत से बस इस दुनिया से गुजार के ले जा, मौत का वक्त आफियत से गुजर जाए, उसके बाद जो मर्जी शैतान हमारे साथ कर ले। इतनी इस शैतान ने हमें तकलीफ देने की ठानी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जहां ज्यादा पैसा होता है वो चोरों की नजरों में होता है बंदा, कौन आता है, कब आता है, कब जाते हैं, क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकाले, घर आते ही लूट लिया क्योंकि पीछा किया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त माला माल हो रहे हैं तो शैतान ने आपको छोड़ोगे? जैसे आप बैंक से पैसे निकलवा के जाते हुए सिक्योरिटी को देखते हैं ना, इधर देख लूं उधर देख लूं, है तो नहीं, ये तो नहीं वो तो नहीं, जब आप यहां से नेकियों के खजाने लूट के और अपने अमल सवाले में ढालते हुए निकलते हैं तो इससे ज्यादा सिक्योर आ करे पहचाने। अब दुआ मांगे कि अल्लाह हमें वो फुरकान दे, वो नजर दे कि जो मैं शैतान को पहचान सकूं। हम कहते हैं ना, फुलां तो नजरों से ऐसे ही लग रहा था, मुझे तो शक पड़ रहा था, वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। फुलां बंदा तो मैं जब गई थी तब भी वहां खड़ा था, निकली हूं तब भी खड़ा था। क्या हम नेकियों के मामले में नहीं पूछेंगे? यूं खुले थैलों में लेके नेकियां लेके फिरेंगे कि आओ लेके लूट लो? इसलिए अपनी नेकियों को छुपा के, आप जितना छुपा के नेकियां करेंगे ना, अल्लाह उतना इखलास देगा और उतनी खोल के रखेगा। अल्लाह के नबी के सहाबा में कुछ सहाबा ऐसे थे कि मुंह पे कपड़े डाल डाल के जंगों में आते थे कि किसी को हमारा चेहरा ना दिखे कि हमने इतनी बहादुरी के जौहर दिखाए। अल्लाह ने कैसे खोला? यही बात उनकी इतनी मशहूर हो गई कि लोग आज इस बात को सुन के कहते हैं माशाल्लाह, कौन थे वो? छुपी नेकी, वो तो और खुल गई। आप अपनी नेकियों की खुद हिफाजत करें, छुपाएं मत, घर वालों को बड़बड़ के बताएं अब मैं बड़ी नेक हो गई और मैंने अब ये कर देना। बोला नहीं करते, अमल करके दिखाते हैं। आप जब वो नेकी शुरू कर देते हैं ना, घर वालों पे इतना रोब तारी होता है, वो जरूरत ही नहीं करेंगे आपको उस नेकी से रोकने की। और आप जब वो खाली बर्तन की तरह बोलते ही रहते हैं ना, दम 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 के ये करने लिए, वो कहते हैं खबरदार, नहीं ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान जूं ही किसी को नेकियों से दूर करने लगता है, अल्लाह फौरन आता है, खबरदार इसको ना कहना ये अबू बकर है, खबरदार ये उमर है, ये अली है, ये उस्मान है। और आज के भी दौर में मुखलसीन की अल्लाह मदद करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जो है वो खूब हिकमत आले हैं। यही मफहूम लेके मैं फिर वापस आऊंगी कि दूसरा मफहूम क्या है तमन्नी का। अब ये चूंकि सिनेरियो चल रहा है तो अगली आयत साथ ही ले लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों शैतान हमारी नेकियां लूटता है या क्यों नबियों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं होने देता। तो फरमाया लियज अलमा युल्की शैतान फितनतन, ताकि अल्लाह ताला बना दे जो वसवसा डालता है शैतान उसको एक आजमाइश। किसके लिए? लिल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरदुन, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। वल्कासियति कुलूबुहुम, और जिनके दिल बड़े सख्त हैं। वइन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और बेशक ज़ालिम लोग मुखालफत में बहुत दूर निकल जाते हैं। यह है पहली वजह, इल्लत या वजह या बीमारी कुछ भी कह लें, यानी पहली वजह तो यह है। सवाल एक पैदा होता है कि शैतान क्यों ऐसा करता है कि हमारी नेकियों की तमन्नाओं को उचक ले जाता है और गलत काम कराता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से हार्ट पेशेंट्स कौन है। नंबर एक, उनको तो मैं ज़रा शैतान के हवाले कर ही दूँ अभी से। क्या बड़ा ऑपरेशन इनका करना है, इनको छोटे डॉक्टर के हाथों में डाल दो। फितना आजमाइश बन जाती है, खरे खोटे का फ़र्क पता चल जाता है, कच्ची ईंटें अलग हो जाती हैं, पक्की ईंटों को अलग किया जाता है। और सख्त दिल, देखिए दो लफ्ज़ हैं यहाँ, एक है कुलूबहुम मरदुन, दिल की बीमारी, दिल बीमार हैं, और दूसरा ये कि दिल सख्त है। हालांकि आप देखिए कि सख्त दिली बजाते खुद एक बीमारी है। अब आप इसको समझ लीजिए, अल्लाह सुबहाना ताला इस तरीके से इन तकलीफ़ों में डालकर सख्त दिल लोगों को और बीमार दिल लोगों को अलग करता है। इसको थोड़ा सा हम किसी भी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अपनी एग्जाम्पल ज़िंदगी की सोचें कि किस तरीके से आप चीज़ों को फ़र्क देखते हैं कि ये सही चीज़ है या असल है। चलो मेरे जहन में एक हल्की सी मिसाल आ रही है कि पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन मैंने सुनी हुई है। कहते हैं कि अंडे जब आते हैं ना बाहर से तो पता नहीं चलता कि ये ख़राब है कि ठीक है ना। तो उसको परखने का एक तरीका यह है कि आप एक बोल में पानी डालें और उसके अंदर अंडा डाल दें, तो ये एक फ़र्क लोग समझते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा आप देखिए कि दालों के गलने की कई मिसालें होती है ना। कुछ टेस्ट होते हैं ना, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर एकदम क्यों नहीं हमारा जाके सीना खोल देते? नहीं, वो कभी ब्लड प्रेशर लेते हैं, कभी आपको ब्लूमिंग करते हैं, कभी आपको चला के देखते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं कि असल बीमारी क्या है। अल्लाह ताला शैतान को दखल अंदाजी का मौका इसलिए देता है कि टेस्ट हो जाए। आप ये एक जुमला लिख लें कि ये शैतानी सारी दखल अंदाजियाँ असल में बंदे के टेस्ट चल रहे होते हैं जो मेन ऑपरेशन से पहले होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि टेस्ट होने के बाद आपका ऑपरेशन भी हो। बस लोग टेस्टों के जरिए पता चल जाता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिस्प्रिन दे दो, खून पतला हो जाएगा, अब ठीक होते रहेंगे। कुछ का पता चलता है, नहीं, कहीं लीकेज है, कहीं पता चलता है क्लॉट आया हुआ है। अब उसके बाद असल चीज़ बाद में होनी होती है। अब ये एक चीज़ समझ लें कि अल्लाह ताला ने शैतान की दखल अंदाजी को असल में बंदे के खरे खोटे होने और उसके बीमार या सेहतमंद होने का जरिया बना दिया। अब दूसरी भी चीज़, फिर हम इसका वापस आएंगे, वली आलमा वाह, और यानी अब ये सेकंड रीज़न है। दूसरी वजह शैतान के इस दखल अंदाज होने की, या शैतान को इतनी ज़रूरत दी कि बंदे के जिस्म के अंदर खून में भी दौड़ने लगे, उसकी वजह क्या है? वली आलम अल्लज़ीन ऊतुल इल्मा अन्नहुल हक मिन रब्बिक। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसमें ये भी हिकमत है कि जान लें वो लोग जिनको इल्म दिया गया, फहम दिया गया, क्या कि अन्नहुल हक मिन रब्बिक, कि ये किताब हक है आपके रब की तरफ से, लिहाजा फयुमिनू बिही, ताकि वो ईमान लाएं उसके साथ, और फतुख्बित लहू कुलूबुहुम, और झुक जाएं, नरम हो जाएं उनके दिल इसके साथ, इसकी सच्चाई के आगे इनके दिल झुक जाएं, इनको और यकीन हो जाए कि शैतान इस कुरान के अंदर दखल अंदाजियाँ जितनी मर्जी कर ले, हम फिर भी इस किताब से दूर नहीं, हम इसके बारे में शक में नहीं, हम इसको सातीरुल अव्वलीन नहीं कहेंगे, हम इसको पहलों की कहानियाँ नहीं कहेंगे, और वाकई ये सच्ची किताब है, और उनके दिल और झुकते हैं। खबात मुखबतीन, झुको, अपना जोश तोड़ो, अकड़ छोड़ो, अब तुम अल्लाह वाले हो, अब तुम शैतानों की नज़रों में बहुत खटक रहे हो, तुम कीमती हो रहे हो, अब तुम दौलतमंद हो रहे हो। देखिए, जब तक इंसान गरीब होता है ना, रिश्तेदार भी उसको इतनी अहमियत नहीं देते, ठीक है ठीक है, लेकिन चार पैसे आते हैं ना तो दूर वाले भी अपने बन बन के आते हैं, लुटेरे भी आ जाते हैं, अपने भी आ जाते हैं। हम जब ईमान के ख़जानों से लबरेज़ होते हैं ना, तो अपने बेगानों की भी नज़रें हम पे लग जाती हैं। लोग हमारी बातें करते हैं, महफिलों में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, कहीं शादी हालों में बैठे हैं, कभी अच्छा कह के, कभी बुरा कह के, कभी हसरत के मारे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों को पता चल जाए कि ये किताब हक है। वह इन्नल्लाहलहादिल्लज़ीना मनु, और बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है ईमान वालों को, इला सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये दूसरी बहुत बड़ी वजह होती है। जब तक शैतान दखल अंदाजी नहीं करता, तब तक पता ही नहीं चलता कि ये रब का कलाम है। इस आयत को पढ़ते हुए मेरे जहन में एक छोटी सी मिसाल आ रही है जो बिल्कुल अनरेलीवेंट लग रही है देखने में, लेकिन बात वाज़े हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो सुलह होती है वो बड़ी मीठी होती है। सच है, जिससे लड़ाई होती है उसके बाद पता चलता है। चलें लड़ाई को जुदाई कह लें, जुदाई के बाद जो मुलाकात होती है ना, उसमें मोहब्बत बहुत होती है। बल्कि बहुत पहले कहीं एक जुमला पढ़ा था कि मुख्तसर जुदाई मोहब्बत में गर्म जोशी पैदा करती है, और तवील जुदाई मोहब्बत की आग को ठंडा कर देती है। और ये 100% सच बात है। आप जिनसे मिलते रहते हैं ना, आपसे मोहब्बत होती है, जिन बच्चों के इर्द गिर्द आप रहते हैं, आपको बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, कुछ दिन थोड़ा दूर जाते हैं, बहुत मिस करते हैं, हाय आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, अच्छे लग रहे हो, याद आ रहे हो, फिर अगर वो नहीं आते ना, तो एक वक्त आता है आपको आदत हो जाती है उनके बगैर रहने की। यही हर रिश्ते में आता है। अब आप इस मिसाल से वापस आएं इस आयत को समझने के लिए। अगर कुरान पढ़ते हुए सारे ही हालात हमारे सही चलते रहे, ना पाबंदी, ना रोक टोक, ना रुकावट, ना ताना, ना इल्ज़ाम, ना आंखों के आंसू, तो किसको कदर आएगी इसकी? ऐसे ही लगेगा जैसे रोज़ सूरज निकलता है और डूबता है, हम भी जाते हैं और पढ़ते हैं। याद करें, किसी दिन कोई शैतानी दखल अंदाजी हुई, हमारा सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैं ऑनलाइन से सुनने वालों को इसकी बिल्कुल अप टू डेट एग्जाम्पल ये दे सकती हूँ कि सुनते सुनते सिर्फ एक लम्हे के लिए वॉइस ब्रेक हुई, मैं खुद भी कभी कभी सुनती हूँ अपना, जब आजकल क्लासेस होती हैं तो कभी कभी जस्ट एक फ्लक्चुएशन होती है, नेट का प्रॉब्लम होगा जो चलाने वालों का, कोई अपना हमारा भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। अब जब आप सुन रहे होते हैं ना, जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जहन मेरे लफ्ज़ों के साथ साथ चल रहा है ना। अगर बीच में मैं जो बात करती हूँ ना, पहले ही शायद आप सोच रहे हो कि इससे आगे क्या बात आनी है, और ऐन उसी वक्त वॉइस ब्रेक हो जाए, फिर कदर आती है कि हाय के फतुख भी तलहू कुलूबुहुम, नेमत छिनने के बाद मिलती है तो कदर आती है। इसी तरह जब कुरान पे पाबंदियाँ लगती हैं ना हमारे, फिर हम रब से रोते हैं, फिर हम बंदों से टूटते हैं और रब के आगे जाते हैं, तो तुख भी तलहू कुलूबुहुम, फिर आती आजजी। वरना तो शायद अगर हमें सारे ही कहना जाओ खुदा के लिए सीखो, पढ़ो, सिखाओ, तो हम इतने सख्त दिल हो चुके हों, रोज़ घर जाके एहसान जताएं, या आपके कहने पे जा रही हूँ, या आपने मुझे मुश्किल में डाला। यकीन करें, ये जो घरों से डांट कभी पड़ जाए, या कभी गर्मी सर्दी, या कभी गम ही है कि वक्त पे नहीं पहुँचे, ये आपके दिल को, मेरे दिल को नरम करती है। तुख भी तलहू कुलूबों, उस वक्त अल्लाह को क्या लगता होगा, कभी सोचा आपने? ये अब दबे दबे जा रही है, जूता हाथ में पकड़ के निकल रही है कि सोए हुए उठ ना जाए। मैं कहती हूँ, अगर हम अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखें, हम अपने आप को इतना हसीन समझें, इतने हमें अपना प्यारा लगे, कभी आप अपने आप को आईने में देख के कहा करें, अल्लाह किसके लिए निकल रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? कितना दिल चाहता है उस वक्त कोई कहे, आए आ जाओ, ना जाओ, आ जाओ सो जाओ बिस्तर में, आ जाओ, कितना दिल चाहता है उस वक्त बंदे का। लेकिन जब बंदा रब के लिए निकलता है, तो वह इन्नल्लाहलहादिल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह रास्ते भी दिखाता है, इला सिराते मुस्तकीम, फिर अल्लाह नहीं बहकने देता। जहाँ हम रास्ता भूलते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम अनाड़ी हैं, हम खिलाड़ी नहीं, कच्चे ड्राइवर हैं। गाड़ी चलते चलते झटका खाती है, मान ले के ड्राइवर का कसूर है, ठीक है रोड अच्छी नहीं थी, लेकिन आपको गड़ा दिख रहा था आप साइड पे चलते। जब नेकी के किसी सफर में पीछे हो, तो अंदर के झोल को देखिए, मुझे ही क्यों किसी ने ऐसे कहा, मेरे ही साथ ऐसा मामला क्यों हुआ,